जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
आशा हमें है विश्वास है हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
कंप्यूटर को कैसे चलाना है, इस कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे हैंडल करना है, इसका ऑपरेशन कैसे होता है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। हाउ टू इम्प्रूव योर माइंड एंड मेमोरी पावर। और इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा जिससे आप अपने हीलिंग इमोशन को हील कर सके। तो अभी मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी का मतलब क्या होता है?
मेमोरी मींस व्हाट एवर द पास्ट यू रिमेम्बर।
व्हाट एवर पास्ट, हाँ, उसको रिमेम्बर करते हैं। पावर टू रिकॉल, यस। मेमोरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पावर टू रिकॉल, क्योंकि आपने याद तो कर लिया, किसी से दोस्ती कर ली और वो कुछ दिन के बाद आपके पास आता है तो आप उसी से पूछते हैं आप कौन, तो वो पूछेगा पहचान कौन। तो मेमोरी मीन्स पावर टू रिकॉल। जनरली क्या होता है, बच्चे भी क्वेश्चन का आंसर याद करके जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, और वहां वो फोल्डर खोलते हैं, लेकिन वो फोल्डर कहां आके खुलता है, घर पर। और तब वो बोलता है कि अरे उस समय तो याद ही नहीं है, मैं याद आया होता तो लिख दिया होता। तो ऐसा क्यों होता है, पावर टू रिकॉल क्यों खत्म हो जाती है, इसके कारण है। हम एक बार इस कंप्यूटर की बनावट समझेंगे, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे हम अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। मेमोरी का मतलब होता है तीन चीज, रजिस्ट्रेशन होता है, रिटेंशन होता है, रिकलेक्शन होता है। कोई भी चीज को आप यहां पर रजिस्टर करते हैं, रिटेन करते हैं और रिटेन करके उसको रिकॉल भी करते हैं। ये तीनों ही चीजें जहां पर है उसी को हम परफेक्ट मेमोरी कहेंगे। कोई भी एक लिंक अगर मिसिंग है उसको हम मेमोरी नहीं कहेंगे। और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है हमारे इस कंप्यूटर में, उसमें चार इंस्ट्रूमेंट होते हैं या चार तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है माइंड, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, मन। दूसरा होता है इंटेलेक्ट, जिसको हम कहते हैं दिमाग। मन और दिमाग में अंतर है, हम ऐसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, मेरा मन नहीं लगता दिमाग काम नहीं करता, ये बोलते हैं ना। कभी ये नहीं बोलते मेरा दिमाग नहीं लगता मन काम नहीं करता, ऐसा तो नहीं बोलते ना। तो मन और दिमाग अलग अलग है, इंटेलेक्ट को दिमाग को बुद्धि भी कहा जाता है। मेमोरी, मेमोरी मतलब आपकी स्मरण शक्ति या डेटा, जो भी डेटा है उसको मेमोरी कहा जाता है। जो भी आपने यहाँ पे स्टोर किया है बचपन से लेके आज तक, वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, वो सारा यहाँ पे जो रिकॉर्डेड डेटा है उसी को हम क्या कहते हैं, मेमोरी। और चौथा होता है ब्रेन। ब्रेन का मतलब दिमाग नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर दिमाग का ऑपरेशन नहीं करते हैं, किसका करते हैं, ब्रेन का करते हैं। ब्रेन मतलब मस्तिष्क। ब्रेन का मतलब क्या हुआ? मस्तिष्क। इसमें ब्रेन हार्डवेयर है जो दिखाई देता है, और इस हार्डवेयर का जो वजन होता है वो हमारे बॉडी के वेट का 2% होता है। बॉडी के वेट का क्या होता है? 2% ही वजन होता है, और बाकी तीनों चीजें क्या होती है? माइंड, इंटेलेक्ट और मेमोरी। ये तीनों चीजें सॉफ्टवेयर होती है जो दिखाई नहीं देता। मन दिखाई नहीं देता, जो स्टोर डेटा है वो भी दिखाई नहीं देता, और दिमाग भी दिखाई नहीं देता। और ये हमारा हेड ऑफ कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? सबके ऊपर है ना, कोई छोड़ के तो नहीं आया, सभी के पास है। स्विच ऑन हो कि स्विच ऑफ है? ऑन है, डॉक्टर साहब ने ऑन कर दिया है ना। कईयों के ऑफ पड़े हुए थे, बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी, अभी चार्ज हो गया, कंप्यूटर ऑन हो गया है ना। तो जस्ट हम एक स्टार्ट करेंगे, इस कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कैसे होती है एक डेमो से। कई लोगों ने डेमो देखा भी होगा, लेकिन जस्ट जो नया है उनके लिए मैं दिखाना चाहता हूं इस कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। ठीक है, तो आप में से कोई भी आप हाथ खड़ा करेंगे, भाई पूछेंगे आपसे, आप अपने मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट नंबर बताएंगे और मैं यहां टाइप करूंगा। ओके, 98, नेक्स्ट 98, देन 7 7 4 0 6 0 6, के बाद 1 6। ओके ओके, एक इनको बताएंगे, जो ये बोलेंगे वही मैं लिखूंगा। ओके, 1 2 3 8 7 7 3 7 7 3 8 5 8 4 8 4 8 4 8 4, के बाद 5 8 4, देन 5 2 4 6 9 3 4 6 9 3 4 6, then 9 3 9 double 9 3 9 3 0 3 9 3 0 2 5 2 5 2 5 5 9 5 5 9 double 8 5 0 then double 8 8 0 8 0 double 0 double 8 8 0, then 00 1 7 1 7 3 1 7, then 6 3 7 1 7 1 0 4 0 4 0 4 3 5 3 5 3 7 4 0 1 7 1 0 4, then 3 5 3 7, next 4 0. Okay, fine. ओके, ये सारे नंबर्स आपने बोले, ये सारे नंबर्स को अगर बोला जाए आपको याद करने के लिए, इस कंप्यूटर में सेव करने के लिए, तो कितना टाइम लगेगा सेव करने के लिए? कितना टाइम लगेगा? अच्छा, पॉसिबल नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा। ओके फाइन, इस कंप्यूटर में एक सेव बटन है, सेव बटन है ना, उस सेव बटन को हम अगर दबा दें तो क्या हो जाएगा? सारा का सारा नंबर सेकंड में सेव हो जाएगा। इस कंप्यूटर को किसने बनाया? किसने बनाया? ह्यूमन माइंड ने बनाया। इस मीन ह्यूमन माइंड इज मोर पावरफुल, क्योंकि ये क्या है? क्रिएटर है, और ये क्या है? क्रिएशन है, है ना? एक क्रिएशन है, ये क्या है? क्रिएटर है। तो क्रिएटर को पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए क्रिएटर को पावरफुल। तो क्रिएटर पावरफुल क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले वो भूल गया कि वो क्रिएटर है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वायरस आ गया है। कंप्यूटर बार बार क्या होता है? क्या होता है? बार बार हैंग होता रहता है, ठीक है? और जैसे जैसे हैंग होता है, आपके पास एंटीवायरस है नहीं? एंटीवायरस है आपके पास में? आपके इस कंप्यूटर में वायरस आया तो आप क्या करते हैं? तुरंत एंटीवायरस उसमें इंस्टॉल करते हैं। लेकिन इसमें एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करते हैं, और एंटीवायरस इंस्टॉल कर भी लेते हैं तो अपडेट नहीं करते, इसलिए कंप्यूटर बार बार क्या होता रहता है? हैंग होता रहता है, ठीक है? नेक्स्ट कारण है कि इस कंप्यूटर की बैटरी क्या होती है? पैकअप हो जाती है। कंप्यूटर की बैटरी क्या होती है? पैक हो जाती है, पता नहीं कब पैक हो जाए, ठीक है? क्योंकि सप्लाई तक डिस्कनेक्शन हो जाता है, रात भर बैटरी चार्ज होती है और 12 एक बजे तक खत्म हो जाती है, फिर आप बोलते हैं मेरा मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ हो गया मतलब आपका कंप्यूटर क्या हो गया? कंप्यूटर क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया, सिंपल, ठीक है? तो बार बार मूड ऑफ होना यानी कंप्यूटर की बैटरी खत्म होना, ठीक है? तो ये सब मेन कारण है जिसके कारण हैंगओवर होता रहता है, और हम बोलते हैं कि हमारी मेमोरी क्या हो गई है? बहुत वीक हो गई है। ऐसी बात नहीं है, मेमोरी सबकी अच्छी है। मैं प्रूव कर दूंगा इस सेशन में कि आप सबकी मेमोरी एक्सेलेंट है, हर एक व्यक्ति की मेमोरी एक्सेलेंट है। ये सारे नंबर्स आपने बोले, ये सारे नंबर्स को हमने लिखा आपके सामने, और साथ साथ इधर भी इसको टाइप किया और इसको हमने सेव कर लिया अपने कंप्यूटर। मुझे सारे नंबर्स याद हो चुके, आपको बिलीव हो रहा है? मैं ये सारे नंबर्स को आपको सुना दूंगा। ओके, अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है ना, ये सारे नंबर्स आपने बोला, सबको दिखाई दे रहा है? टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, ऑल रिवर्स ऑर्डर में मैं आपको सुनाऊंगा, ठीक है? मैं अपनी ये दोनों आंखों को बंद कर लेता हूँ, तीसरा आंख खोल करके मैं देखना चाहता हूँ कि क्या क्या आपने बोला है। आपने जो नंबर्स बोले हैं वो नंबर्स हैं 9 8 7 4 0 6 1 6 1 2 3 8 1 1 3 4 4 7 7 3 8 5 8 4 5 2 4 6 9 3 9 3 9 0 3 2 5 5 9 8 8 8 0 0 0 1 7 6 3 7 1 0 4 3 5 3 7 and 4 0, ठीक है? अभी मैं इसको रिवर्स बोलूंगा, रिवर्स उल्टा है। 0 4 7 3 5 3 4 0 0 8 8 8 9 5 5 2 0 3 9 3 then 9 3 then 9 9 then 3 9 then 6 4 then 2 5 4 8 5 8 then 7 3 7 then 7 4 then 4 3 1 1 8 3 then 2 1 then 6 1 then 6 0 then 4 7 8 9, ठीक है? आप बीच से भी पूछ सकते हैं कोई भी नंबर, उसके पहले बाद में क्या बता दें, बीच से भी कोई पूछ नंबर नंबर आप बताइए, उसके पहले और बाद में हम बता सकते हैं, और बाद में है 99, ठीक है, 06 के पहले है 74, बाद में है 16 जी, पता 25 के बाद में है 59, पहले है 30, ठीक है, 05 तो किसी ने नहीं बोला था, 05 किसी ने नहीं बोला, 40 इज द लास्ट नंबर, 40 के पहले 37 है, 52 के पहले है 84, बाद में है 46, ठीक है, ओके, तो दिस इज कंसंट्रेशन, एक है एकाग्रता है, जितने भी साइकोनोरोबिस्ट के उनको पता चल जाता है कि अपने माइंड को कैसे मैनेज किया जाए, मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाए, आजकल यही मैनेज नहीं होता, सब चीज मैनेज हो जाता है लेकिन ये मैनेज नहीं होता, तो कैसे मैनेज करना है उसके बारे में बताऊंगा आपको। ये जो हमारा कंप्यूटर है इसको हमने नाम दिया है कौन सा कंप्यूटर, हेड टॉप कंप्यूटर, क्योंकि हेड टॉप कंप्यूटर सबके कहाँ है, हेड पे है ना। अब ये कंप्यूटर के कैसे काम करता है मैं जस्ट एक आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। इस कंप्यूटर और इस कंप्यूटर को हम अगर कंपेयर करें तो जैसे इस कंप्यूटर में आपका क्या है, कीबोर्ड है, उसी तरह यहाँ के कंप्यूटर में भी कीबोर्ड है। यहाँ का जो कीबोर्ड है वो है हमारा 5 सेंस ऑर्गन, क्या है हमारा 5 सेंस ऑर्गन, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 मोटर ऑर्गन्स, 5 कर्मेंद्रिया हमारी प्रिंटर है, इससे हमारा प्रिंट आउट निकलता है। सेंस ऑर्गन से इनपुट होता है और मोटर ऑर्गन से क्या होता है, आउटपुट होता है, प्रिंट आउट निकलता है उसका। और इस कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसके आधार पर कंप्यूटर ऑपरेट होता है, उसकी स्पीड रहती है, जिसको ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, यानी विंडो 0, अभी विंडो 7 है, XP है, विस्टा है, विंडो विस्टा 2000, विंडो 97, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसी तरह हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दिमाग, बुद्धि, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, बुद्धि। जैसे हमारा कंप्यूटर है, हम क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर ओएस काम नहीं कर रहा है, बोलते हैं कैसा ओएस रखे हो, इसको चेंज कर लो, स्पीड बड़ा हो जाएगा, कहेंगे ना। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं। उसी तरह इस कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दिमाग को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, बुद्धि को क्या करते हैं, पावरफुल बनाते हैं, अपग्रेड करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना गांव वालों को, उन लोगों की बुद्धि पुरानी है, उनकी पुरानी सोच है, नए वालों क्या बोलते हैं, इनका नया दिमाग है ना, नई सोच है, तो इसका अपग्रेडेशन करना है ना। नेक्स्ट, डेस्कटॉप पे जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं ना। उसी तरह हमारे यहाँ के मॉनिटर पे जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम बोलते हैं माइंड, उसको क्या बोलते हैं हम, माइंड, वो हमारा मन है। और बचपन से लेके आज तक जो भी हमने याद किए हैं, रिकॉर्डिंग किया है, वो सारा रिकॉर्डिंग कहाँ है, हमारी मेमोरी में है। तो मेमोरी मतलब जैसे हार्ड डिस्क में हम अपने इन्फॉर्मेशन को सेव करके रखते हैं, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, तो उसी तरह हमारी मेमोरी में डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव है, जहां हमने अपनी यादों को क्या किया है, स्टोर करके रखा है। प्रिंट आउट किसका निकलता है, आप कभी भी कोई किसी का प्रिंट आउट अगर देना हो तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि उस फोल्डर को खुलना चाहिए, वो फोल्डर जब तक ओपन नहीं होगा तब तक उसका प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। जैसे आप पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाए, पेन ड्राइव लगा करके अगर पेन ड्राइव नहीं खुला तो क्या उसका प्रिंट आउट आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। उसी तरह जो फोल्डर यहां पे खुलता है उसी का प्रिंट आउट निकलता है, ऑटोमेटिकली निकलता है। जैसे आप अकेले में हैं और अकेले में यहां पे कोई जोक का वीडियो खुल गया, डॉक्टर रूप सिंह आपको याद आ गए, तो क्या होगा, आपका स्माइल का प्रिंट आउट निकलेगा ना, निकलेगा या नहीं निकलेगा। और यहाँ पे अगर कोई दुख का वीडियो खोल गया, कोई बीते दिन याद आ गए, तो क्या होगा? आप उदास हो जाएंगे, आपका प्रिंट आउट क्या निकलेगा, है ना, उदासी का, गम का, है ना। आज मुझे अकेला छोड़ दो, आज मुझे किसी से बात नहीं करना है, तो ऐसा प्रिंट आउट निकलेगा। तो हमारा जो भी आउटपुट निकलता है, प्रिंट आउट निकलता है, वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो फोल्डर खुलता है उसका क्वालिटी क्या है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस का फोल्डर खुलेगा तो आप स्ट्रेस हो जाएंगे, होंगे। अगर यहाँ पे हैप्पीनेस का होगा तो हैप्पी हो जाएंगे, समझ आ रहा है। अगर आपको आपके दुश्मन को कोई याद कर दिया, उसका फोल्डर खोल दिया, उसका नाम आपके सामने ले लिया, जैसे उसका नाम लिया आपकी मेमोरी से वो सारी यादें क्लिक हो गई और उसकी वीडियो यहाँ पे चलने लगी और आपका मन क्या हो गया, खराब हो गया, आप क्या बोलेंगे, उसका नाम मतलब मेरे सामने, यही कह रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड। जैसे एक बार्बर था और एक मुखिया जो विलेज का हेडमैन था, मुखिया, उसकी हजामत बना रहा था। उसके बाल इतने बहुत सॉफ्ट थे और थोड़े थोड़े थे, घने नहीं थे, तो बार्बर को बार बार ऐसे करता, उसको काटने में नहीं बनती थी। तो उनसे मुखिया जी से बात करना शुरू किया और उनसे पूछा कि मुखिया जी आप बताइए कि आपकी बीवी जो भाग गई थी वो अभी कहाँ है। अब मुखिया जी को क्या होगा, गुस्सा, उनका फोल्डर खुल गया, है ना, और वो आग बबूला को बोले तुम अपना काम करो, फालतू की बातें मत करो, है ना। वो अपना काट लिया, काटने के बाद फिर बोलता है अच्छा ठीक है, हम आपकी फैमिली के बारे में नहीं पूछेंगे। वो दूसरे गांव की मुखिया से कुछ बातें हो गई थी, तकरार हो गया, तो उसका क्या हुआ। मुखिया जी फिर बोले तू अपना काम करो, काम से काम रखो, फालतू की बात मत करो, उन्होंने आवाज तेज करके कहा और जल्दी से उनका हजामत बना के और सोचा कि ये तो कुछ बोलेंगे, इसलिए पहले ही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला कि माफ करना, मैं इसलिए याद दिला रहा था कि आपके बाल बहुत सॉफ्ट थे, मैं कितना भी कंघी लगा रहा था वो खड़े ही नहीं होते थे, जब भी मैं ये चीज याद कराता था आपके बाल खड़े हो जाते थे और कटिंग आसानी से हो जाती थी। तो बार्बर ने मुखिया जी का फोल्डर खोला और उनका रिएक्शन हुआ। तो ऐसे ही इसी को बोलते हैं माइंड बॉडी रिलेशनशिप। जो मन में है उसका रिएक्शन कहाँ दिखता है, बॉडी में, उसी का प्रिंट आउट निकलता है, जो फोल्डर यहाँ पे खुलेगा। अब आप एग्जामिनेशन हॉल में फोल्डर को क्लिक करते हैं, जो क्वेश्चन के आंसर आए हैं वो आपकी मेमोरी में है, आप उसको क्लिक करते हैं लेकिन यहाँ पे खुलता नहीं है, तो उसका प्रिंट आउट निकलेगा, नहीं निकलेगा। और घर आकर खुलता है प्रिंट आउट, तो आप क्या बोलते हैं, अब क्या फायदा, है ना, अब तो हो चुका, जो प्रिंटिंग निकालना था तो हो गया, ऐसा ही होता है ना। तो हमारा एक कंप्यूटर कैसे काम करता है, एक और एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा रहा हूं। जैसे किसी ने दरवाजा नॉक किया, नॉकिंग साउंड कैसे आता है आपके कानों के द्वारा, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या है, बटन है ना, कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बटन है। हमारे बटन कौन कौन से है, आईज, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये पांच बटन है। जो बटन दबेगा उसी से इन्फॉर्मेशन कहां आएगा, अंदर आएगा। कान का बटन दबेगा तो कान से आवाज सुनाई देगी, अगर कान का बटन खराब हो तो कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा तब फिर आवाज अंदर जाएगी, ऐसा होगा ना। तो मान लो किसी ने दरवाजा नॉक किया कानों के द्वारा, यहाँ पे सूचना मिली मन के मॉनिटर पे कि कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। जैसे नॉक कर रहा है आपका दिमाग, जो आपका ओएस है, वो सारा फोल्डर खोल देगा, किससे, साउंड से रिलेटेड, कौन हो सकता है, कौन आया मिलने के लिए, किसको आपने अपॉइंटमेंट दिया है, ये सारा फोल्डर क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। खुलने के बाद में आपको दिखाई देगा हाँ मैंने इसको बुलाया था, वही दरवाजा नॉक कर रहा है। फिर आप यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि मुझे दरवाजा खोलना है कि नहीं खोलना है। फिर जैसे डिसीजन लिया कि दरवाजा खोलना है तो आप किसको प्रिंट आउट देंगे, पैर को प्रिंट आउट देंगे, पैर प्रिंट आउट के द्वारा वहां पर जाएगा दरवाजा के पास, वहां जाके हाथ का प्रिंट आउट देंगे, हाथ दरवाजा को खोलेगा। जैसे दरवाजा खोलेगा आपका ये वेब कैमरा है ना, उसका फोटोग्राफ लेगा, स्नैप लेकर के यहाँ मॉनिटर पे डालेगा, फिर मॉनिटर पे जैसे उसका फोटोग्राफ होगा वो सर्च होगा ऑटो में, और वो फोटोग्राफ से रिलेटेड जितने फोल्डर है वो सारे फोल्डर खुल जाएंगे, और जैसे खुल जाएंगे आप क्या कहेंगे, अच्छा आप है, बोलेंगे ना, पहचान में आ जाएगा। अगर फोल्डर हैंग हो गया, खुला ही नहीं, इमेज आ गया, अच्छा ये तो इमेज है यहाँ पे, लेकिन कि कौन है, कहाँ से आया, वो फोल्डर नहीं खुला, आधा फोल्डर खुला, हैंग हो गया रिमेनिंग फोल्डर, तो आप क्या कहेंगे? देखा हुआ है, याद नहीं आ रहा है। और बिल्कुल नया फोटोग्राफ है, आपकी मेमोरी से सर्च किया गया और मेमोरी ने रिजल्ट दिया कि ये फोल्डर है ही नहीं, है ना, इनका इमेज है ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? आप कौन? आपको मैं नहीं जानता। ऐसा ही होता है ना। तो ये कंप्यूटर कैसे काम करता है, कितना फास्ट काम करता है, करता है कि नहीं करता है? जैसे मान लो स्किन है, यहाँ पे स्किन का बटन ऑन होता है, सेंसेशन जाता है ना। मान लो यहाँ पे कोई इंसेक्ट बाइट किया, जैसे यहाँ बाइटिंग का सेंसेशन हुआ, कहाँ जाएगा? मॉनिटर पे, है ना, कि कोई चीज काट रहा है। तुरंत यहाँ से आदेश मिलेगा किसको? आंख को, उसका फोटोग्राफ लो। आंख क्या करेगा? ऐसे देखेगा, देखेगा ना। उसका फोटोग्राफ कहाँ डिस्प्ले करेगा? मॉनिटर पे। जैसे मॉनिटर पे उसका फोटोग्राफ आएगा, आपका कंप्यूटर उसको सर्च करेगा ये कौन सा फोटोग्राफ है, है ना, पता चला कि ये मच्छर का फोटोग्राफ है, है ना। और मच्छर के लिए फिर प्रिंटआउट, डिफॉल्ट प्रिंटआउट भी सेट है, क्या करना है, है ना, जैसे मच्छर दिखाई पड़ेगा, है ना, प्रिंटआउट निकल जाएगा हाथ का, है ना। और जिसका कंप्यूटर स्लो होगा वो क्या करेगा, वो पहचानने में टाइम लगेगा, अच्छा ये मच्छर है क्या, अच्छा मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो जिसका कंप्यूटर स्लो होगा वो डिसीजन लेने में भी देरी करेगा, है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति था, ऑफिस में काम करता था, उसके बॉस उसको सुबह सुबह काम देते थे, उसको समझ में देरी से आता था, वो दोपहर तक समझता ही रहता था कि बॉस ने क्या काम दिया है, और जब समझ जाता था तो पूरा शाम तक उस काम को करके देता था, दिन भर में सिर्फ एक काम करता था। उसके बॉस फेड अप हो गए, बॉस ने कहा कि इसको हम निकालना ही चाहिए। बॉस ने उसको बुलाया, पहले से ही लेटर टाइप कर दिया कि आपको कल से नोटिस दिया जा रहा है, कल से आने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने बुलाया और बुलाकर वर्बली बोला उनको कि कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। अब उसका कंप्यूटर क्या है, स्लो है, तो पूछा क्या सर समझ में नहीं आया, तो बॉस को टाइम नहीं था, उन्होंने बोला कि लेटर में टाइप कर दिया है, पढ़ लेना। अब वो घर जब रास्ते में चला तो बस में वो लेटर को पढ़ते रहा, बहुत देर तक पढ़ने के बाद में समझ में आ गया, जब घर पर पहुंचा बस स्टॉप पे तो उसको समझ में आ गया, क्या क्या समझ में आया उसको, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। अब उसका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे कौन सा फोल्डर खोल गया, इनसिक्योरिटी का, है ना, जॉब चली गई। अब उसका प्रिंटआउट क्या निकलेगा, उदासी का कि खुशी का, उदासी का। घर पर जैसे जाता है, दरवाजा खुलता है, देखते हैं बच्चे शोर कर रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, पार्टी चल रही है, अब इसका मन दुखी है, अब वो उसका प्रिंटआउट क्या निकलता है, बंद करो ये सब पार्टी, मेरी नौकरी चली गई और तुम लोग खुशी मना रहे हो। वो भूल भी किया था कि उसके बच्चे का बर्थडे। वहां पर एक उसका दोस्त इंतजार कर रहा था, उसको बाहर लेके गया और बोला कि क्यों चिल्ला रहे हैं उनके ऊपर, अच्छी बात हो गई, नौकरी चले गए, आपको मैं एक खुशखबरी देने आया हूँ, आपको लॉटरी लग गई 1 करोड़ रुपए कि आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। अब उसका कंप्यूटर स्लो है, वो पूछा क्या समझ में नहीं आया। तो उसको बोला चलो मैं समझाता हूँ, इनको पार्टी मनाने दो, मेरे साथ चलो, चलो उस गांव में चलते हैं, वहां पे किसी की डेथ हो गई है, हम लोगों का जानकार है, उसको वहां जाके सांत्वना देके आते हैं। अब वो रास्ते में उसको समझाता गया कि तुम्हारी लॉटरी लग गई, ये इतने पैसे मिलेंगे, इतना होगा, है ना, उसको समझाते रहा। और जब वो डेड बॉडी के पास पहुंचा तो उसका फोल्डर खोल गया कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी मिल गई। अब उसके स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे क्या हो गया, खुशी का कि उदासी का, खुशी का। उसका प्रिंटआउट क्या निकलेगा, खुशी का निकलेगा। और वो डेड बॉडी सामने पड़ा है और उसका प्रिंटआउट निकल रहा है, मुझे जिस दिन का इंतजार था वो तो आ गया। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था, मैं तो आज माला माल हो गया। अब जिनकी डेड बॉडी रखी हुई है, जिनके लोग संबंधी, वो क्या सोचेंगे, ये कहां से आ गया, इसका स्क्रू ढीला है क्या। तो जिसका स्क्रू ढीला है ना, उसका ऐसे ही हाल होता है, यहाँ पे जो फोल्डर खुलता है उसका प्रिंटआउट निकलता है। आपने देखा ना पागलों का क्या होता है ना, जो यहाँ पे फोल्डर खुलेगा उसको बोलना शुरू कर देंगे, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मान लिया आपको पागल ने देखा है, आपको कभी कुछ बोला नहीं है और वो व्यक्ति पागल हो गया, तो आपसे रिलेटेड जो भी फोल्डर है ना वो उसका खुल जाएगा, वो बोलने लगेगा। जो आपको कभी नहीं बोला वो भी आपके बारे में, जो मन में छिपा रखा है वो भी बोलने लगेगा। तो लोग क्या कहेंगे, पागल है ना? क्योंकि पागलों का क्या होता है, कंट्रोल नहीं होता है, उनके मॉनिटर पे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो रहा है, जबरदस्ती कंट्रोल करना चाहते हैं। आजकल की स्थिति क्या है कि इस कंप्यूटर पे अपने आप फोल्डर खुलता रहता है, अपने आप, चाहते नहीं है लेकिन खुल जाता है। हम चाहते हैं टाइपिंग करते हैं कुछ और, तब तक एक फोल्डर खुल गया। हम क्या करते हैं, पता नहीं कहाँ से वायरस आ रहा है, बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है, कंप्यूटर हैंग कर दे रहा है, मैं टाइप करता हूँ कुछ और, फोल्डर खुल जाता है कुछ और। ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो आजकल ऐसे ही होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं नजरें किताब पे रहती है, इधर वीडियो का फोल्डर खुल जाता है जो फिल्म देखा है ना। अब यहाँ पे उसके मॉनिटर पे वीडियो चलने लगता है और नजरें किताबों पे रहती है ना। जो कल फिल्म देखा था उसकी वीडियो चलेगी, या तो अपना हीरो हीरोइन ढूंढ करके अपना वीडियो तैयार करने लगेगा, शूटिंग करने लगेगा, है ना? ऐसा ही होता है। और क्या बोलेगा, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहीं ना कहीं तो लग रहा है उसका मन, कहाँ लगता है उसका मन, किधर लगता है? कहीं ना कहीं तो लगता है ना। तो इस कंप्यूटर की भाषा जब जान जाएंगे तो इसका कंट्रोल भी इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, क्योंकि आप इसको हैंडल कर पाएंगे। आज की स्थिति क्या है, अगर मैं इस स्थिति को बयान करूं तो मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लिया जाए कि आपको एक अंधेरे में टीवी के आगे बैठा दिया जाए, रूम को लॉक कर दिया जाए, आपके हाथ से रिमोट को छीन लिया जाए, टीवी को चैनल स्कैन पर लगा दिया जाए। चैनल स्कैन समझते हैं ना, मतलब एक भी चैनल कितना देर तक टिकेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, है ना, थोड़ी सेकंड के लिए आएगा, फिर वो बार बार चलता रहेगा। आप अपने मन से चैनल बदल नहीं सकते, वो अपने आप चैनल बदलता रहेगा, है ना। और आपको कुर्सी से बांध दिया जाए और रूम को लॉक कर दिया जाए, आपकी स्थिति क्या होगी, क्या होगी आप बताइए, है ना, पागलों जैसी हो जाएगी ना, चिल्लाएंगे ना, चीखेंगे ना। आज वही हो रहा है, इस बॉडी में आत्मा लॉक हो गई है, लॉक हो गई है। अब आत्मा के सामने माइंड की मॉनिटर ऑन है और उस मॉनिटर पे फोल्डर बार बार खुलते जा रहे हैं। उसके हाथ में माउस भी नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, अपने आप फोल्डर खुल रहा है। जैसा फोल्डर खुल रहा है वैसा उसका रिएक्शन हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो आज ये कंप्यूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, वायरस ज्यादा हो गया है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को पता नहीं इस कंप्यूटर को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि उसके पास उसका मैनुअल है ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं जाता। डॉक्टर क्या कहते हैं, इस कंप्यूटर को फोर्सफुली शट डाउन कर दो, है ना, वो आपको नींद की गोली दे देगा, क्या हो जाएगा, वो कंप्यूटर पूरा का पूरा शट डाउन हो जाएगा। फिर जब ऑन होगा फिर वही सारे फोल्डर्स खुलने लगेंगे, फिर आप दवा खाएंगे, बार बार फोर्सफुली शट डाउन करते रहेंगे इस कंप्यूटर को, यानी नींद की गोलियां बार बार खाते रहेंगे, तो एक कंप्यूटर की मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। और ऐसे ही हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, अल्जाइमर्स हो जाते हैं। समझ में आया, भूलने की बीमारी क्यों होती है, बार बार दवाइयां खा खा के फोर्सफुली हम इस कंप्यूटर को जबरदस्ती क्या करते हैं, बंद करते रहते। जैसे कंप्यूटर को बंद करने का प्रोसीजर है ना, स्टार्ट करना है, फिर शटडाउन की बटन को दबाना है, तब जाके शटडाउन होगा। डायरेक्ट बार बार ऐसे कंप्यूटर को शटडाउन करेंगे तो कंप्यूटर की मेमोरी क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। तो इस कंप्यूटर को हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रूप से विधि से शटडाउन नहीं करते हैं, जबरदस्ती शटडाउन करते हैं, बंद करते हैं। और जबरदस्ती शटडाउन करते हैं और फिर कंप्यूटर जब रात में ऑन हो जाता है तो सपने चलने लगते हैं। सपना क्या है, आपका कंप्यूटर स्लीप मोड में रहता है, स्लीप मोड तो जानते हैं ना, स्लीप मोड में मतलब फोल्डर्स खुले रहते हैं। तो रात में कंप्यूटर ऑन हो गया और यहाँ पे स्क्रीन पे वो सारे ड्रीम आने लगते हैं ना। ड्रीम क्या है, स्लीप में ही ड्रीम आता है। जब आप कंप्यूटर को स्लीप मोड में छोड़ते हैं तो ड्रीम आता है, इसको प्रॉपर शटडाउन करेंगे तब जाके अच्छी नींद आएगी, नहीं तो सपने बार बार आते रहेंगे, समझ में। तो इस कंप्यूटर को हैंडल करना है, इसको हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, दूसरे लोग आपके कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करेंगे। कैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करते हैं, और आपका कंप्यूटर उनके हाथ में होता है। आप देखिए, जो कंप्यूटर चलाते हैं उसकी लैंग्वेज ये चार है, ये चार लैंग्वेज है, दिखाई दे रहा है, कौन कौन सी लैंग्वेज है, इमेज, कलर, म्यूजिक, आर्ट और ग्राफिक्स। मतलब आपका मन बार बार इन्हीं चारों चीजें के पीछे भागता है। जैसे घोड़े को घास चाहिए, उसको घास देंगे तो नहीं भागेगा, घास नहीं खिलाएंगे तो घोड़ा कहां जाएगा, घास के ही पीछे जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसी तरह आपके मन रूपी घोड़े को ये चार तरह के घास हमेशा चाहिए उसके सामने, और जहां पर भी ये चारों चीजें मिलेगी मन वहीं भागेगा। अब पढ़ाई में ये घास मिलता नहीं है, है ना, किताबों में काले काले अक्षर भैंस जैसे दिखते हैं, न उसमें कोई इमेज होता है, न कलर होता है, न म्यूजिक होता है ना। तो इस घोड़े को घास चाहिए, तो यहाँ पे वीडियो ऑन हो जाता है ना, जिसमें कलर है, इमेज है, म्यूजिक है, और आपका मन कहाँ भागता है, वीडियो उसके पीछे भागता है। आप घर आते हैं, टीवी की सीरियल देखते हैं या 3 घंटे की मूवी देखते हैं, वहां पे चारों चीजें होती है, आपका मन कितना एकाग्र हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, हो जाता है, क्योंकि वहां पे क्या मिल रहा है, चारों चीजें मिल रही है। मैं एक फ्रेंड के घर गया, उसने डिनर पे इनवाइट किया और कंप्लेन कर रहा था कि मेरे बच्चे का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है पढ़ाई में, पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैं जब घर पहुंचा तो टीवी के आगे खाना खा रहा था, उसका कार्टून शो चल रहा था, उसका पिता बोला कि देखो अंकल आए हैं, नमस्ते करो, वैसे बोला नमस्ते अंकल, और टीवी के सामने देखा, जैसे कि उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मुझे देखा, है ना, वो भी भूल गया कि कौन से अंकल आए हैं। और मैं देखा उसकी एकाग्रता टीवी के कार्टून शो पे इतनी ज्यादा है कि वो खा रहा है, उसको पता नहीं कि वो क्या खा रहा है। मैं देखा दूध रोटी खा रहा था, रोटी को टुकड़े करता, दूध में डालता और खा लेता। मैंने धीरे से उसकी दूध की कटोरी हटा दी, उसको कुछ भी पता नहीं चला। रोटी को तोड़ता, दूध में वो एक्शन करता और खा लेता। उसका टीवी सीरियल खत्म हो गया, कार्टून शो, उसका रोटी भी खत्म हो गया। तब वो मेरे तरफ देखा, अच्छा अंकल कैसे हो, बोला बहुत ठीक, क्या खाए आप, तो बोलता दूध रोटी, बोला दूध कहाँ है कटोरी आपकी, तो देख रहा है ताली में है ही नहीं, बोले ये आपकी दूध की कटोरी, सारा दूध का कटोरी तो ऐसे ही, आपने खाया क्या। तो आप देखिए उस बच्चे की एकाग्रता कहाँ थी, टीवी में, कार्टून में, क्यों, क्योंकि मन को क्या मिल रहा है, टीवी के प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर, उनको पता है कि आपके माइंड में कचरा कैसे भरा जाए, वो भर देते हैं। वो ऐसे ऐसे इन चारों को मिला के प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं ना च्यवनप्राश, उसमें क्या है, अमिताभ बच्चन का कलरफुल इमेज है, च्यवनप्राश खा रहा है तो कलरफुल इमेज है ना, म्यूजिक भी है ना, तो वो मेमोरी में क्या होता है, डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट हो जाता है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट्स सर, जितने एडवर्टाइजमेंट्स बनते हैं, मूवी बनता है, टीवी सीरियल बनता है, एडवर्टाइजमेंट होती है पेपर में, वो सारे में यही चारों लैंग्वेज का यूज होता है, क्योंकि इन चारों लैंग्वेज के पीछे ही आपका मन भागता है। आपका कहीं भी मन नहीं लगता तो कहीं ना कहीं यही लगता है ना। अगर आपको कहा जाए कि इनको याद करो, भगवान को याद करो, तो भगवान याद नहीं आएगा, कोई ना कोई तो याद आएगा ना, या तो आपका दोस्त याद आएगा, या तो आपका लवर याद आएगा, विलव्ड याद आएगा, कोई भी तो याद आएगा ना जिसका इमेज है। आपका मन कहीं भी किसी कलर पर टिक जाएगा, टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो ये चार लैंग्वेज को हम अगर यूज करना सीख जाए, हैंडल करना सीख जाए, तो हमारा माइंड और हमारी मेमोरी हमारे कंट्रोल में होगा, दूसरे के कंट्रोल में नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, आप देखिए इमेज के बारे में दे ले, मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं, आप आंख बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए एक हाथी कार चला रहा है, देखिए मूवी को, एक एलिफेंट है जो कार चला रहा है, वो कभी आंख खोले, देखा सभी ने, देखा क्या देखा है, चलाने लगा, कौन सा कार था, नहीं देखा आपने, तो ठीक से नहीं देखा, इसका तो वीडियो बना ही नहीं है ना, अच्छा हाथी आया ही नहीं कार में, ओहो बहुत दुख की बात है ना। अच्छा और किसी ने देखा? हाँ क्या देखा? अच्छा नहीं ना, आपने देखा क्या, वो छोटा है कि बड़ा है, गया कैसे? अच्छा आप बड़ा छोटा कर रहे थे, गया नहीं अभी, आप कहाँ थे अंदर? हाँ बताइए आप, कार को छोटा कर दिया और किसको? हाथी को छोटा किया, कार में बैठा दिया। कौन सा कार था? अच्छा ओपन का, कौन सा? मारुति क्या था, कौन सा कार था? वो देखा नहीं है ना। ओके फाइन, हमने ये एक्सरसाइज इसलिए दिया देखने के लिए कि आप इमेजिनेशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, क्योंकि नॉलेज का सीड क्या है? इमेजिनेशन। एरोप्लेन सबसे पहले कहां बना? इमेजिनेशन में बना। कोई भी मकान बनाते हैं उसका नक्शा सबसे पहले कहां बनता है? इमेजिनेशन में बनता है। संसार में जो भी चीज की इन्वेंशन हुई है उसकी सबसे पहले इमेज कहां बनती है? माइंड में बनती है। तो इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। इफ यू कैनॉट इमेजिन देन नॉलेज कैनॉट कम आउट। न्यूटन ने पेड़ से सेव को गिरते हुए देखा और देखने के बाद इसके ऊपर इमेजिनेशन करने लगा और इमेजिनेशन कर करके उसने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी लिख डाले। तो क्या उसके पहले फल ऊपर जाता था क्या? ग्रेविटी नहीं थी? थी। इस यूनिवर्स में सनातन सत्य है जिसको अभी भी डिस्कवर किया जा रहा है। जैसे साइकोन्यूरोबिक्स कैसे डिस्कवर किया? इमेजिनेशन। परमात्मा ने मुझे इमेज दिखाया, उस इमेज के ऊपर हमने इमेजिनेशन किया, उसके वैज्ञानिक पहलुओं पर अध्ययन किया, फिर साइकोन्यूरोबिक्स का किताब लिखा। तो ये सारी बातें कब होती है? जब आपका दिमाग चलता है, इमेजेज बनते हैं। लेकिन जब इमेज बनना ही स्टॉप हो जाएगा, जब आप बोलेंगे नहीं ये बनेगा ही नहीं, आपका हाथी कार में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब यू आर इंटरफेयरिंग विद द इमेजिनेशन। और जब आप अपने इंटरफेरेंस करेंगे इमेजिनेशन को, तो आपका खुद का इमेज अच्छा नहीं बन पाएगा। आप इमेजिन करेंगे मैं अच्छा हो जाऊंगा, फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद इमेजिन करेंगे नहीं 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 मैं तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो फर्स्ट नहीं कर पाएगा, है ना। कहने का मतलब आप अपने इमेज को ही क्या करते हैं? डेली डिस्टोर्ट करते हैं, डेली खत्म कर देते हैं। इसलिए आपका एक्शन कंसंट्रेशन नहीं होता। इसलिए इमेजिनेशन इज द सीड। जैसा चित्र होता है वैसा ही अंदर का चरित्र होता है। जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। खुद आप अपना इमेज बार बार डिस्ट्रॉय करेंगे तो यू कैन बिकम नथिंग, आप कुछ भी नहीं बन पाएंगे। कलर, कलर की भी स्पीड। हम न्यूरोबिक्स में साइकोन्यूरोबिक्स में कलर के ऊपर कंसंट्रेशन क्यों कराते हैं? देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट। इसके पीछे साइंस है और उस साइंस को नहीं लोग ध्यान में रखते हैं, इसलिए उनका स्पीड दोनों ब्रेन का बराबर नहीं है, कम हो गया है स्पीड। आप खुद चेक कर लीजिए, आप देखिए आपके सामने जो स्क्रीन आ रहा है इसमें पढ़िए, तो आप जल्दी जल्दी पढ़िए इन शब्दों को। अभी आपने पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़िए जिस कलर में ये शब्द लिखे गए हैं। येलो ग्रीन में लिखा गया है तो इसको ग्रीन पढ़ेंगे, ब्लू रेड में है तो रेड पढ़ेंगे, ऑरेंज ब्लू पढ़ेंगे, ब्लैक येलो रेड ब्लू ग्रीन ब्लैक पर्पल रेड येलो ब्लू रेड ग्रीन, ऐसे पढ़ना। आप पढ़िए, आप अब आपका स्पीड कैसा है खुद ही बताइए, स्लो हो गया? कहने का मतलब जब मैंने आपको बोला इसको पढ़िए तो पढ़ने की स्पीड बहुत फास्ट थी, जब मैं बोला इसके कलर को बता के पढ़िए, कलर बताइए, तो आपको देरी हो गई, स्पीड स्लो हो गया। इसका मतलब कि आपकी पढ़ने की स्पीड फास्ट है ना, अंडरस्टैंडिंग स्पीड स्लो है, मतलब समझने की स्पीड क्या है? स्लो है। और समझने की स्पीड स्लो होने का मतलब हुआ कि आपका समझने का दरवाजा वीक है, इसलिए चोर कहां से एंटर करता है? इसी दरवाजे, जो दरवाजा कमजोर होगा वहीं से तो चोर अंदर आएगा। सारे व्यर्थ के फालतू के जितने चित्र है वो इसी दरवाजे से आपके अंदर अंदर चला जाता है और आपकी माइंड को लोग प्रोग्राम करते हैं, है ना, और आपके कंप्यूटर में सारा वायरस छोड़ देते हैं और आप क्या कहते हैं, वो आज वो मेरा दिमाग खराब करके चला गया, मेरा मूड ऑफ करके चला गया। ऐसे ही होता है ना। कुछ दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के घर गया, उसका बेटा क्रिकेट खेल करके आ रहा था, उसके यहाँ पे घुटनों पे पैंट फटे हुए थे। मैंने उसको देखा और पूछा कि कैसे गिर गए, कैसे पैंट आपका फट गया, तो बोला नहीं 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 ये फटा नहीं, ये तो स्टाइल है। तो मैंने सोचा कि ये कहां से स्टाइल आ गया, तो मैंने देखा, आप इनको देखा, देखिए है ना, और इनको देखा, देखिए दिखाई दे रहा है ना। अब ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी पैंट फटे हुए पहनेंगे तो यहां पे जो चित्र बनेगा है ना, बार बार ऐसा चित्र जाएगा तो लोग सोचेंगे क्या कि ये अच्छा लगता है जब ये मुहर लग गया। जैसे च्यवनप्राश तो कभी खाए नहीं है अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन ने, आप खाते हैं क्योंकि वो सिर्फ दिखाते हैं, खाते आप हैं, तो ये भी एक बार पहनने के इतने पैसे ले लेते। होता क्या है कि बाहर से बहुत सारा डोनेशन आता है, फटे पुराने कपड़े आते हैं, भारत गरीब देश है इसलिए इनमें गरीबों को बांटने के लिए एनजीओ के पास आते हैं। एनजीओ क्या करती है, इतने सारे कपड़े फटे पुराने हो जाते हैं, अब एनजीओ सोचती इससे पैसे पैसे कमाया जाए, उसने वो लोग क्या करते हैं सेलिब्रिटीज को पकड़ बोलते हैं एक बार सिर्फ पहन लो, हम आपका तस्वीर खींच लेंगे और लोगों को बार बार दिखाते रहेंगे, फिर लोग क्या करेंगे ऐसे जितने पुराने कपड़े हैं जींस है वो सारे खरीद लेंगे और इसको मॉल में सप्लाई कर देते हैं, और मॉल मॉल में जाकर के आप जो नए पैंट थे उससे ज्यादा कीमत पे वो फटे हुए पैंट खरीद के लाते हैं और पहन करके सोचते हैं कि बहुत अच्छा है। ऐसा ही है ना, माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो जैसा चित्र होता है वैसा ही चरित्र होता है। जैसे आपने देख सकते हैं कि मेरा जब ऐसा फोटोग्राफ हो गया था, शरीर से पूरे बाल निकल गए थे कैंसर से, तो हमने भी ये चित्र बनाया कि नहीं मेरे सारे बाल आ जाएंगे। मैंने अपने पूरे बाल देखे सिर के ऊपर, इमेजिनेशन किया, हमारा सारा चीज ठीक हो रहा है, ऐसा बार बार हमने चित्र बनाया, बार बार हीलिंग का इमेज भेजा, भेजने के बाद ठीक हो गया। अभी देखिए तो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। जैसा इसीलिए जैसा चित्र होता है वैसा ही चरित्र होता है, वैसा ही आप फॉलो करते हैं। और इन लोगों को फॉलो करेंगे तो क्या कैसा पहनेंगे, है ऐसे पहने जैसे कुत्तों ने नोच लिया है ना? तो ऐसे ऐसे कपड़े कहां से आते हैं मन में पहनने के लिए, देख के ही आते हैं ना। कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी है ना, आमिर खान की है ना, आमिर खान ने एक ऐसा फोटो खिंचवाया तो एक छोटा सा बालक बोलता नहीं हमें ऐसे ही चाहिए कपड़े, तो उसके लिए उसके घर से लोगों ने कपड़े खरीदे। 4 साल का बालक देखिए कैसे स्टाइल में फोटो खिंचा रहा है, दिख रहा है ना, ये कहां से आ रहा है स्टाइल, पिक्चर से। आमिर खान की वो गजनी पिक्चर है जिसमें आमिर खान ने ऐसे बाल बना लिया ना। अब ऐसे देख करके सभी सोचते हैं कि मैं भी क्या बन जाऊं, आमिर खान बन जाऊं ऐसे। अब आमिर खान ने ऐसा पोज दिया, आमिर खान जैसा किसी का अकल हो या नहीं हो, एक्टिंग का शक्ल हो या नहीं हो, बॉडी की मसल बनाई हो या नहीं बनाई हो, लेकिन आमिर खान जरूर बनेंगे। आप देखिए कैसे आमिर खान बन रहे हैं, देख रहे हैं ना, अपने आप को आमिर खान समझ रहे हैं, है ना, ना अकल है, ना शक्ल है, ना मसल है ना, लेकिन उस चित्र देख करके उन्हें चरित्र बना लिया कि हमें आमिर खान, हम तो बन ही गए, है ना। और ये सारे लोग आमिर खान के फैन बन गए। आमिर खान ने अपना बाल तो बढ़ा लिया, दूसरे के बाल को कत्ल करने लगा। और आमिर खान के बाद बारी आ जाती है सलमान खान के, अब इनका बाल का स्टाइल दूसरा। अब कितने बाल के डिजाइन बदलते रहते हैं आजकल, तो मैं देखता हूँ बाल ऐसे चोर जैसे सब खड़े कर लेते, पता नहीं वो जेल लगा लगा करके, है ना, कैसा दिखता है समझ में नहीं आता है, इतने छोटे छोटे से बाल और इधर 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 पता नहीं लपेट लेते हैं क्या लपेट। अभी इनके बाल का स्टाइल देखिए कैसा हो गया, ये पता नहीं कौन सा फिल्म का है ना, और ये बाल कहां से कॉपी किया अमेरिका सलमान खान ने, देखिए कहां से कॉपी किया इन्होंने। आप देखिए दोनों का शेप देखिए, इनका बालों का शेप और इसका शेप, है ना, यहां से इन्होंने कॉपी कर लिया, बस कहीं से कॉपी कर लेना है ना। और ये पता नहीं बालों के डिजाइन कहां कहां से डेवलप होते रहते हैं, है ना। अभी आजकल पता नहीं ये रिंग्स पहनने की पता नहीं कहां से कहां से वो आदत हो गई है ना। अब आंख में भी पता नहीं, एक कान और नाक का तो मैं जानता था, है ना, अभी अभी आंख में भी है ना। और आंख तो आंख, एक कान में इतना बड़ा हैंगर टांग के घूम रहा है कपड़े लटकाने के लिए। और तो और ये होठ में भी इधर लटका लिया। अभी ये यहाँ पे उसको पता नहीं दर्द भी नहीं। आजकल मैं सुनता हूँ कि जीभ में भी लोग बांध लेते हैं, जीभ में भी लटका रहे, पता नहीं कैसे खाते होंगे। सारा स्टाइल कहाँ से आ रहा है? अभी देखिए पशु की तरह इसका स्टाइल, जैसे नकेल लगाते हैं ना पशु की तरह वैसे। अब इसको कौन सा रिंग बोलेंगे? अब ये सब स्टाइल कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है आप समझ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहा है ना, चित्र से। तो आपके बच्चे का मन क्यों पढ़ाई में नहीं लगता आप समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे ऐसे ऐसे चित्र देखते हैं, कंप्यूटर पर देखेंगे और टीवी पर देखेंगे। आपको उनको चेक करने का टाइम नहीं है, देख लो टीवी, हम फ्री होकर के मार्केट से घूम के आते हैं, है ना। वो सारा कचरा टीवी से यहाँ डाल लेते हैं और डालने के बाद में फिर आपको ही तंग करते हैं और बोलते हैं कि मेरे बच्चे का तो मन ही नहीं लगता, ये तंग करता है। क्यों तंग करता है समझ में आ गया ना। ऐसे ऐसे डांस करेंगे, अब देखिए इनका डांस का स्टाइल है ना। ये कौन सा डांस है? एरोबिक डांस है ना। एरोबिक डांस में सारे मसल टाइट हो गए हैं, है ना, जैसे लग रहा है कि इनको सारा गुस्सा इनको आ गया है। इसलिए टाइम्स मैगजीन ने क्या किया, रिसर्च किया और उसने पाया कि मनुष्य का मन बंदर जैसा हो गया है, क्योंकि उसको सोच भी बंदर जैसी हो गई है। इसलिए मनुष्य का मन बंदर जैसा चंचल हो गया है। मनुष्य का मन बंदर जैसा चंचल हो गया है, क्यों तुलना की गई? बंदर का मन चंचल क्यों होता है? क्योंकि उसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है, राइट ब्रेन काम नहीं करता। मनुष्य इसलिए है क्योंकि उसका राइट ब्रेन काम करना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन पावर अच्छी होनी चाहिए, कलर परसेप्शन पावर अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आज वो चीज नहीं है। आप देखिए, जब मैं आपको एग्जांपल दिया कि आप हाथी को देखिए कार चला रहा है, देख क्यों दिया? क्योंकि इमेजिनेशन, आप उसे इमेजिनेशन करने के लिए बोला, लेकिन जैसे आप इमेजिनेशन शुरू किए आपका कौन सा ब्रेन यूज हो रहा है? राइट ब्रेन, क्रिएटिव ब्रेन यूज हो रहा है। और माइंड जो क्रिएटिव माइंड है वो राइट ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा है वैसा स्केचिंग के लिए। लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है जो लेफ्ट ब्रेन को यूज करता है वो उसको टैम्पर कर रहा है, आपके इमेजिनेशन को क्या कर रहा है? टैम्पर कर रहा है। बोल रहा है कि हाँ हाथी कार में जाएगा कैसे, हाथी कार चलाएगा क्या? मीन्स योर ओन लॉजिक इज नॉट अलाउइंग टू फॉर्म द राइट इमेज। समझ आ रहा है ना, राइट इमेज फॉर्म नहीं हो पा रहा है। और फॉर्म जब नहीं होता है राइट इमेज, तो आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। और जब आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है तो आप दूसरे की क्रिएटिविटी को इधर डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, आपका पूरा कंप्यूटर है कचरे से भर जाता है। अब जो अंदर है वही तो बार बार बाहर निकलेगा। आप बोलते मेरा मन नहीं लगता, कहां लगता है? जो अंदर है वही तो बार बार निकल के आता रहता है। किसने भरा है आप बताइए, किसने भरा है? आपने ही भरा है, चाहे सोच के भरा हो, चाहे टीवी के द्वारा भरा हो, आपने ही भरा है ना। इसलिए इस सेटअप कंप्यूटर को पावरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएटिविटी डेवलप। मान लो ये 15 चीजें आपको याद करनी है, आप पढ़िए, 30 सेकंड्स में याद करना है इसको। अभी 30 सेकेंड्स हो गए, याद हो गए? वो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखाए, इसको आपने पढ़ के याद करना चाहा, रीडिंग, अंडरस्टैंड नहीं किया। जब इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो याद हो जाएगा जल्दी से। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग स्पीड स्लो है। अभी हम क्या करेंगे, ये जितने ऑब्जेक्ट्स आपको दिखा है इनके आपको पिक्चर दिखाऊंगा, कलरफुल इमेज दिखाऊंगा, और कलरफुल इमेज जैसे आप 10 सेकेंड देखेंगे वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आपको एक महीने तो कम से कम याद रहेगा। और अभी आपको 2 मिनट दे दू, 5 मिनट दे दू याद करने के लिए, आप रटर लगाएंगे, 10 बार बोलेंगे माइकल जैक्सन सोफा, माइकल जैक्सन सोफा, टाइगर, याद नहीं होगा। कल सुबह पूछूंगा बोल जाएंगे, समझ में आया ना। अभी आप देखिए, अभी सबसे ऊपर क्या है, फोटो फ्रेम है जिसमें स्कूटर है, दिखाई दिया। उसके नीचे विंडो है, विंडो के नीचे क्या है, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के ठीक सामने सांप है, सांप के मुंह में क्या है, तलवार है, और ठीक सामने माइकल जैक्सन है सोफे के नीचे, सोफा पीले रंग का है, गोल्ड का बना हुआ है, गोल्डन सोफा है, जिसके ऊपर टाइगर है, टाइगर के राइट हैंड में चॉकलेट है, टाइगर के सिर के ऊपर पॉट है, पॉट में 2 ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के ऊपर पैरेट बैठी है, उसके मुंह में चाबी है। हो गया, अभी आपने जस्ट देखा 10 सेकेंड, ये सारा कॉपी पेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। आप बताइए सबसे पहले क्या था, उसके बाद क्या था, फोटो फ्रेम के बाद स्कूटर, उसके बाद विंडो, उसके बाद बटरफ्लाई, उसके बाद स्नेक, स्नेक के बाद स्वर्ड, स्वर्ड के बाद माइकल जैक्सन, उसके बाद सोफा, सोफा के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद टाइगर, टाइगर के बाद चॉकलेट, चॉकलेट के बाद पॉट, पॉट के बाद ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के बाद पायलट, पायलट के बाद। तो आपकी मेमोरी में क्या सेव हुआ, क्या सेव हुआ बताइए, इमेज ही सेव हुआ ना। तो आप जो देखते हैं वो चीज याद हो जाता है, जो सुनते हैं वो चीज आप भूल जाते हैं, समझ में। देखी हुई बात याद होती है, सुनी हुई बात आप भूल जाते हैं। तो आप देखते ज्यादा हैं, और क्या देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो ज्यादा देखते हैं, जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, इसलिए फालतू की बातें अंदर चली गई है, वही बार बार आती है, आपके मूड को बार बार स्विंग करती है और डिस्टर्ब करती है, समझ। अगर आपसे एक महीने बाद भी मैं पूछूं कि माइकल जैक्सन कहां था, आप क्या कहेंगे, वो सोफे के ऊपर कभी नहीं आएगा। तो आप क्या रिकॉल करके बोल रहे हैं, व्हाट यू आर रिकॉलिंग, इमेज। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। हाँ जी, नंबर, नंबर का इमेजिनेशन के लिए भी चित्र बनाते हैं, जो हमारे 6-5 दिन का कोर्स है उसमें आपको सिखाया जाएगा डिटेल में कि कैसे हम किसी भी चीज का इमेज बनाते हैं, चाहे वो आपके पढ़ाई का हो, चाहे सब्जेक्ट का हो, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हो या हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर हो या ज्योग्राफी के मैप्स हो, ये सारे चीजों को कैसे याद किया जाए, इसके तरीके हैं, इसका इमेजेज है ना, वो हम लोग बनाते हैं और सिखाते हैं। और जब बच्चे सीख जाते हैं तो एक बार में IAS कम्पीट कर जाते हैं, एक बार में IIT क्रैक कर लेते हैं, एक बार में MBBS की एग्जाम पास कर लेते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ पता नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्रिएटिविटी डेवलप करना है। आप इस कंप्यूटर को अभी सिखाया नहीं गया है, यही हमने साइंस ऑफ मेमोरी साइको न्यूरोबिक सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया, और परमात्मा ने मुझे पहला चांस दिया वर्ल्ड में कि इस हेडटॉप कंप्यूटर का पूरा मैनुअल निकालने के लिए। अदरवाइज आप वर्ल्ड की कोई भी मेमोरी की किताब देख लीजिए, उस मेमोरी की किताब में हेडटॉप कंप्यूटर के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में, उसके तुलनात्मक अध्ययन के बारे में कभी नहीं लिखा है। वो सिर्फ ब्रेन के बारे में लिखा है लेकिन माइंड के बारे में नहीं लिखा। जिन्होंने भी अभी तक आज तक मेमोरी के ऊपर स्टडी किया है उन्होंने सिर्फ ब्रेन को लेकर किया है, माइंड को लेकर के नहीं किया है। इसलिए हमने सबसे पहला किताब लिखा पावर ऑफ थर्ड आई, इम्प्रूव योर मेमोरी, उसमें हमने पूरा ये सारा सिस्टम के बारे में समझाया और कैसे याद किया जाए उसके बारे में समझाया। और इसलिए हमने कोर्स डिजाइन किया मेमोरी डेवलपमेंट्स एंड साइको न्यूरोबिक्स। इस कोर्स को हमने सर्टिफिकेट डिप्लोमा PG डिप्लोमा में इंट्रोड्यूस किया और स्पेशल साइको न्यूरोबिक्स का 3 साल का BSc डिग्री कोर्स बनाया और 2 साल का MSc का कोर्स बनाया और PhD का भी कोर्स। तो आप डायरेक्ट एज ए प्रोफेशन आप इसको पूरा 5 साल 7-8 साल डीप स्टडी कर सकते हैं। इस स्टडी करने के बाद में आप खुद माइंड मास्टर बन सकते हैं। और ये कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं हो कि आपने बीए किया है, कॉमर्स किया है तो आप एमएससी या पीजी डिप्लोमा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, ये इतना इजी है, सहज है, प्रैक्टिकल है। इसमें एक पेपर प्रैक्टिकल कंपलसरी है, प्रैक्टिकल आपको करना है सारा चीज। और जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपकी माइंड भी पावर इंप्रूव होगी, मेमोरी पावर इंक्रीज होगी और हीलिंग पावर भी इंक्रीज होगी। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अभी आपको दिया है, इसको याद करना है। अभी तो ये तो क्या है, ये वर्ड है ना, वो ऑब्जेक्ट से, अब इनका इमेज नहीं बनता है, इनका इमेज नहीं बनता है। जब तक आप इमेज नहीं बनाएंगे याद नहीं होगा। अभी आपको याद करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमेज बनाना पड़ेगा। आप एक बार पढ़िए, विड्रॉ, पैकअप, टो डेट, एडजस्ट, डिस्क्रिमिनेट, जज, फेस, कोऑपरेट, और इनका इमेज बना करके एक लिंक बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई कंप्यूटर में आप सेव करते हैं, जैसे आप सेव बटन दबाते हैं एक विंडो खुलता है और पूछा जाता है कहां इसको सेव करना चाहते हो, पूछा जाता है ना, मींस लिंक मांगता है। कंप्यूटर में जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी सेविंग होती है, क्या होता है, उनका एक लिंक होता है। उसी तरह इस कंप्यूटर में भी कोई भी इंफॉर्मेशन को आप सेव करेंगे वो लिंक खोजता है। जब तक लिंक इधर नहीं डालेंगे इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगा। जैसे आपसे कोई पूछे ये शर्ट कब ली थी, आप लिंक करेंगे, हाँ उसने मुझे बर्थडे पे प्रेजेंट किया था, लिंक, दैट इज कॉल्ड लिंक, यू आर एसोसिएटिंग। तो दिस इज द लॉ ऑफ मेमोरी, एसोसिएशन। अब इनको याद करना है तो क्या करेंगे, विड्रॉ का इमेज बनाएंगे। विड्रॉ का इमेज क्या होगा, एटीएम से हम पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, हो सकता है इमेज, एटीएम मशीन। पैकअप, पैकअप को क्या करेंगे, सूटकेस में पैक कर दिया, हो सकता है इमेज। टोल रेट, टोल रेट का इमेज क्या हो सकता है, है? गांधी जी को देख लीजिए, कोई गांधी जी को एक थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आगे कर देते, मतलब उनमें सहन शक्ति जाता है, गांधी जी का इमेज हो गया। यू कैन मेक एनी इमेज, इट्स नॉट ओनली गांधी जी, यू कैन मेक एनी इमेज, यू हैव फ्रीडम टू चूज इमेज बिकॉज इट इज योर इमेजिनेशन पावर। उसी तरह एडजस्ट, एडजस्टमेंट का क्या इमेज हो सकता है, एक ट्रेन के ऊपर एक ही बर्थ पे हम क्या कर रहे हैं, सीट शेयर कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेट, डिस्क्रिमिनेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। आपके हाथ में मान लो मोती है और पत्थर है, दोनों को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, पत्थर और मोती को अलग अलग कर रहे हैं। जज, जज का इमेज, जज जैसा देख लो, ऑर्डर ऑर्डर वाला जज देख लो, कोट पहना हुआ। फेस, फेस को फेसबुक देख लो, है ना, या और कुछ देख सकते हो, चोर च्वाइस, या देखते फेस मास्क देख लीजिए, कोई फेस मास्क लगाता है ना वो फेस मास्क देख लीजिए। कोऑपरेट, कोऑपरेट का अच्छा हैंडशेक, कोऑपरेट करेंगे तो हाथ मिलाते हैं ना, ये इमेज देख लो। अब आपके इमेज तैयार हो गए, अब आपको क्या करना है, बस लिंक कर देना है। आंख बंद कीजिए सभी, आंख बंद कीजिए, अब देखिए कि आपने एटीएम से पैसे विड्रॉ किए, एटीएम से पैसे विड्रॉ करने के बाद में उसको सूटकेस में पैक किया, पैक करने के बाद में आप गांधी जी से मिले ट्रेन में, जो आपको उन्होंने बर्थ को एडजस्ट करने, उसी जिस बर्थ पे बैठे थे उस पर आपको एडजस्ट किया, और उनके हाथ में बहुत सारे मोती और पत्थर पड़े हुए थे, बोले कि चलो बैठ के हम इसको अलग अलग करते हैं। जैसे जैसे वो अलग कर रहे थे एक जज आया और जज फेस मास्क लगाया हुआ था, और जज ने फेस मास्क हटाया और इसके बाद गांधी जी के साथ हैंडशेक किया और वो था जवाहरलाल नेहरू, हो गया, अभी याद हो गया आपको। सबसे पहले क्या था, विड्रॉ, दूसरा क्या था, पैकअप, तीसरा क्या था, टोल रेट, चौथा क्या था, एडजस्ट, फिर पांचवा क्या था, डिस्क्रिमिनेट, सिक्स्थ क्या था, जज, नेक्स्ट क्या था, फेस, नेक्स्ट क्या था, कोऑपरेट। अब आपको रिकॉल कर रहे तो क्या याद आ रहा है, इमेज याद आ रहा है कि वर्ड याद आ रहा है, इमेज, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। आप इस कंप्यूटर में देखिए प्रोग्रामिंग क्या, इसकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी लैंग्वेज है ना, जो भी चीज आप लिखते हैं 01 01 01 में वो कन्वर्ट हो जाती है। उसी तरह यहां डायरेक्ट सेविंग नहीं होती है, जब तक इसकी लैंग्वेज की हर एक चीज की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे कभी ये प्रोग्राम नहीं होगा। आप देखिए जितने भी रामायण है, महाभारत, ये सारा क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये साइको ड्रामा है। ऐसा नहीं है कि सचमुच में राम जी की सीता चुराई गई थी और उनका वनवास हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारा साइको ड्रामा है। साइको ड्रामा समझते हैं, रामचरित्र मानस का मतलब क्या हुआ, राम चरित्र मानस, राम का चरित्र कहा मन में। तुलसीदास ने क्या कहा कि ये साइको ड्रामा है, लेकिन लोगों ने सोचा ये सचमुच में हुआ। अब राम कौन था, राम किसको कहा जाता है, आत्मा को। राम किसको कहा जाता है, आत्मा को, आत्मा राम कहते हैं ना। और राम की पत्नी सीता, तो आत्मा की पत्नी, पत्नी हमेशा अच्छी होती है ना, एडवाइस देती है ना। तो आत्मा में सबसे अच्छी क्या चीज होती है, बुद्धि। क्या होती है, बुद्धि। तो सीता क्या है, बुद्धि है। आत्मा राम है, सीता क्या है, बुद्धि है। और मन, मन का लक्ष्य, मन के अंदर जो लक्षण होने चाहिए वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब क्या हुआ, लक्ष्य मन। ये सब इमेज, ये भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदला गया है। ये जितने एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं उन एब्स्ट्रैक्ट चीज को पर्सनिफाई किया गया है एक ड्रामा के रूप में, इसीलिए इसको साइको ड्रामा कहा गया है। तो लक्ष्मण कौन हुआ, मन के लक्षण। मन के लक्षण क्या होने चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, होना चाहिए ना, खुशी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। तो ये सारा मन का लक्षण है, तो उसको क्या कहा गया, लक्ष्मण। ठीक है, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर जब तक सीता है, यानी मन, जब मन के अंदर जब सारे लक्षण है और बुद्धि हमारी उसके बीच में है, बुद्धि बाहर नहीं गई है इन लक्षणों के बाहर, है ना, तब तक बुद्धि क्या है, सेफ है। जैसे बुद्धि लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करती है, यानी मन का जो लक्षण है उससे बाहर निकलती है, रावण उसको कैप्चर कर लेता है। रावण किसको कहा गया है, बुराइयों को रावण कहा गया है, है ना। और जैसे रावण बुद्धि को अपहरण कर लेता है, हम क्या कहते हैं, उसकी बुद्धि रूपी सीता चोरी हो गई, हम क्या बोलते, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो लक्ष्मण और राम दोनों वनवास घूमेंगे ना, घूमेंगे नहीं घूमेंगे, वनवास का मतलब ठिकाना नहीं है, बुद्धि गायब हो गई। तो मन क्या करेगा और राम क्या करेगा पता ही नहीं। तो राम सबसे पहले पूछता है किससे, जटायु से पूछता है, है ना। और जटायु के भी रावण ने पंख काट दिए। जटायु किसको कहा जाता है, जटा वाले साधु संन्यासी, जटा वाले साधु सन्यासी। अब जटा वाले साधु सन्यासी के रावण ने उमंग और उत्साह के पंख काट डाले हैं। अब वो असहाय पड़ा हुआ है, बस मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, है ना। और रावण को, रावण बुद्धि को लेके चला गया। तो राम को जटायु क्या बताता है कि रावण मतलब माया आपकी बुद्धि को लेके चला गया, कहाँ, सात समुन्दर पार, है ना। और वो सात समुन्दर पार का मतलब कौन से सात समुन्दर है, सातों गुणों से दूर लेके चला गया। कहाँ बैठा दिया, शोक वाटिका में बैठा दिया। कहाँ बैठा दिया, शोक वाटिका में। तो बुद्धि रूपी सीता शोक वाटिका में बैठी हुई है, बैठी हुई है, वहां पे रोग शोक दुख अशांति है। और राम और लक्ष्मण बन बन घूम रहे हैं, मतलब हम सभी बन बन घूम रहे हैं कि हमें बुद्धि आ जाए। हम लोग भगवान से क्या मांगते हैं, बुद्धि मांगते हैं कि मन मांगते हैं। कभी आपने मांगा, हे भगवान मुझे मन दे दो, क्या मांगेंगे हम, बुद्धि दे दो, हमारी बुद्धि को लौटा दो, बुद्धि को लौटा दो, हमारी बुद्धि रूपी सीता से चोरी हो गई। अब बुद्धि रूपी सीता को पाने के लिए आपको इन सातों गुणों को धारण करना पड़ेगा, और धारण करके रावण से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब रावण से लड़ाई करने के लिए रावण के घर में ही विभीषण है, लेकिन विभीषण डरपोक है, है ना। विभीषण को सीक्रेट पता है, है ना। और विभीषण ने क्या बताया कि रावण की नाभि में क्या है, अमृत है। रावण की नाभि में अमृत है, इसका मतलब क्या हुआ, नाभि का मतलब क्या हुआ। देखिए, कई लोग आप बोलते हैं ना, आप तो मेरे दिल में रहते हो। आपका दिल कहाँ है, कहाँ आपका दिल, पता है आपका दिल कहाँ है, कहाँ दिल है, यहाँ पे है। ये तो शरीर का दिल है, आत्मा का दिल कहाँ है, आत्मा का दिल कहाँ है, देखिए मन बुद्धि और संस्कार यही होता है ना। मन आपका हेड हो गया, मन क्या हो गया हेड हो गया, और बुद्धि आपका बीच वाला दिल हो गया है ना, और संस्कार आपका पेट हो गया, समझ रहे। तो आपकी जो बुराई है, रावण की बुराई कहाँ है, पेट में है, मतलब संस्कारों में है, समझाया, संस्कारों में, यहाँ नाभि में है, यहाँ तीर मारो, मतलब संस्कार को बदलो। जब तक संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक यहीं से तो अंदर आता है, जो पेट में है वो इधर आएगा, है ना। इसलिए नाभि में तीर मारो, समझाया, संस्कारों को खत्म करो। जब तक ये संस्कार खत्म नहीं होंगे रावण नहीं मरेगा, क्योंकि यहां से सप्लाई होता है, यहां मतलब आत्मा को पर्सनिफाई किया गया है एक ह्यूमन के फॉर्म में। हम बोलते हैं ना आप हमारे दिल में रहते हो, यानी आपको हम बुद्धि से याद करते हैं। परमात्मा को किसे याद करते हैं, इस दिल में कि बुद्धि में? बुद्धि में ही ना, बुद्धि से ही तो याद करेंगे ना। तो परमात्मा आपके दिल में रहते हैं, इसका मतलब परमात्मा आपकी बुद्धि में रहते हैं। दिल तख्त, भगवान दिल तख्त की बात करता है, यानी बुद्धि का तख्त है परमात्मा। तो विभीषण किसको कहा जाता है? विभीषण उनको कहा जाता है जो आजकल बड़े लंबे चौड़े भाषण देते, बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं इस संसार में, है ना, है ना, बहुत सारे मोटिवेटर जो लंबी लंबी किताबें लिखते हैं, मोटिवेशनल बुक लिखते हैं। आपने डेल कार्नेगी का नाम सुना है? सुना है, उन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, हाउ टू स्टॉप वरी स्टार्ट लिविंग, है ना, चिंता को कैसे खत्म करें और जीवन को कैसे जिए, इसके ऊपर किताब लिखी। और उन्होंने, उनका मौत कैसे हुआ पता है? खुद सुसाइड किया उन्होंने, हाँ डेल कार्नेगी ने खुद सुसाइड किया। जो दुनिया को बोला कि चिंता मत करो, उसने खुद ही चिंता से सुसाइड कर लिया। इसको बोलते हैं विभीषण। विभीषण मतलब यू नो द सीक्रेट बट यू कैनॉट एक्सिक्यूट, समझ में आ रहा है। आपके पास घर में रावण, आपको पता है कि रावण नाग के नाभि में अमृत है, तो आप रावण को खत्म कर सकते हो, लेकिन पावर नहीं है, पवित्रता की शक्ति नहीं है, सिर्फ भाषण देना है, बोलना है, लंबे लंबे चौड़े कोर्स कराना है, वर्कशॉप कराना है, लेकिन उनसे पूछो उसमें पवित्रता की शक्ति है उनमें, है वर्कजज की शक्ति है, नहीं है। इसको बोलते विभीषण। सिर्फ सीक्रेट पता है, एक्सिक्यूशन का तरीका पता नहीं है। तो राम को कहा जाता है, अब लक्ष्मण को ही मेघनाद ने शक्ति से मारा। इसका मतलब क्या हुआ? मेघनाद का मतलब क्या हुआ? रावण का बेटा, क्रोध है ना, जो गर्जना करता है मेघ की तरह, क्या करता है? गर्जना करता है। तो हमारा मन डर जाता है, जब आपको कोई जोर से डांटेगा, बोलेगा, चिल्लाएगा, तुम ऐसा हो वैसा हो, आपका मन क्या हो जाएगा? डर जाएगा। इसको बोलते हैं लक्ष्मण को शक्ति पात, शक्ति लगी। शक्ति लगी मतलब मन क्या हो गया? धाराशाही हो गया। मन में जो उमंग तरंग था क्या हो गया? खत्म हो गया। तो मन कब पावरफुल होगा? लक्ष्मण कब पावरफुल हुआ? लक्ष्मण के पास क्या शक्ति थी? ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। क्या थी? ब्रह्मचर्य की शक्ति थी। और उसको संजीवनी बूटी पिलाई गई। संजीवनी बूटी का मतलब क्या हुआ? ज्ञान बताया गया कि आपका लक्षण क्या है, तुम लक्ष्मण क्यों हो, क्योंकि आप में शांति है, शक्ति है, विल पावर है। ये संजीवनी बूटी उसको पिलाई गई। जब पिलाई गई तो उसने मेघनाद का खत्म कर दिया। मतलब हम डरते नहीं, निडर हो गया। निडर बनना अर्थात मेघनाद को खत्म करना। और फिर आत्मा रूपी राम संस्कारों को खत्म किया, जो बुरे संस्कार थे। क्योंकि पहले राम क्या करते थे? रावण के गर्दन को काटते थे, लेकिन गर्दन फिर से वापस आ जाता था। इसका मतलब कि हम अपने आप को एक्शन लेवल पे चेंज करना चाहते हैं, लेकिन संस्कार लेवल पे नहीं करना चाहते। एक्शन लेवल पे आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन गुस्से का बीज तो यहाँ भरा हुआ है ना। तो अभी आज गुस्सा नहीं करेंगे, गुस्से का गर्दन आपने काट के भगवान को खुश कर दिया, जैसे बाबा बोलता है ना, हाथ उठाओ, कोई कितने लोग गुस्सा नहीं करेंगे, सभी हाथ उठा दें, मतलब सभी ने गर्दन क्रोध का काट दिया, लेकिन जैसे बाहर निकले क्रोध का फिर गर्दन आ गया। इसीलिए कहा जाता है राम बार बार रावण को गर्दन को काटते थे लेकिन रावण का गर्दन बार बार आ जाता था। इसका मतलब उस संस्कारों में भरा हुआ था। इसीलिए संस्कार को बदलो, जो इधर इम्प्रेशन है, रॉन्ग इम्प्रेशन है, जो कचरा भरा हुआ है उस कचरा को खत्म करो। पेट में भरा हुआ है, जो मैं बताया ना मेमोरी में सारा कचरा ही तो भरा हुआ है। आपका हार्ड डिस्क फुल हो गया है, पढ़ाई करते अच्छी चीज, इधर से मैसेज आता है हार्ड डिस्क इज फुल, और जब तो कचरा नहीं निकलेगा नया राइटिंग कैसे होगा। तो रावण का वध करने के लिए राम क्या करता है, अपने संस्कारों को खत्म करता है। रावण मर जाता है और रावण मरने के बाद उसको सीता बुद्धि प्राप्त होती है और उस बुद्धि रूपी सीता के दो बच्चे होते हैं, लव और कुश। लव मतलब प्रेम, कुश मतलब खुशी। प्रेम और खुशी के दो बच्चे के साथ आप आत्मा कहाँ चली जाती है, अपने घर में। धरती फट जाती है, ये शरीर खत्म हो जाता है, आत्मा परम धाम चली जाती है। यही तो सारा रामायण की कहानी है ना। तो हम सब राम कब रावण का वध करेंगे, कब हमारा मन मेघनाथ का कत्ल करेगा, कब हमारे कुंभकर्ण खत्म होंगे। कुंभकर्ण मतलब कान घड़े की तरह सुन सुन के पक गया है ना। जैसे बोलते ना घड़े की तरह कान हो गई है, सब कुछ भी डालो बाहर निकल जाता है ना। तो कुंभकर्ण मतलब आलसीपना, सुन सुन के थक गए हैं, एक्सीक्यूशन पैरालिसिस है। तो यह है रामायण। अगर ऐसा लोग बताएगा तो क्या राम के और मस्जिद में और मंदिर में झगड़ा होगा, पढ़ाई नहीं किसी ने, तथ्यों को गलत तरीके से पेश कर दिया गया, राम के पूरे चरित्र को ध्वस्त कर दिया गया। जो मैसेज रामचरितमानस में तुलसीदास जी देना चाहते थे वो मैसेज नहीं दिया गया। तो जब तक ये नहीं होगा हमारा संस्कार बदलेगा कैसे, हम बदलेंगे कैसे। ये है मेमोरी। इस मेमोरी को हमें क्या करना है, एक्सीक्यूट करना है। हमें इसको मैनेज करने के लिए इधर लड़ाई लड़नी है, अंदर की लड़ाई लड़नी है, बाहर की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। गीता में भी ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया गया, भीम को क्यों नहीं दिया गया, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया गया, नकुल को क्यों नहीं दिया गया, सहदेव को क्यों नहीं दिया गया, क्यों अर्जुन को ही दिया गया। और महाभारत की लड़ाई के बाद युधिष्ठिर को राजा क्यों बनाया गया, जब अर्जुन को ज्ञान दिया गया तो अर्जुन को राजा बनना चाहिए था, अर्जुन तो खास दोस्त था भगवान का, क्यों। युधिष्ठिर कौन है, युद्ध में जो स्थिर है, जो यहाँ पे साइको वार चल रहा है, जिसको परमात्मा ने गीता में कहा है लाभ हो हानि हो निंदा हो अस्तुति हो, सब में क्या है बैलेंस, सब में क्या है बैलेंस है, वो युधिष्ठिर है। भीम कौन है, जिसके पास ज्ञान की गदा है और ज्ञान की गदा से बुराइयों को खत्म कर देता है, लेकिन उसको लड़ाई लड़ना पड़ता है, लड़ाई लड़के स्थिर हो जाता है, अपने आप को सेटल कर ले। उसके पास लिसनिंग एबिलिटी है, उसके मन में क्वेश्चन तो है लेकिन वो लड़ाई करके जीत सकता है। वो एबिलिटी को परमात्मा ने देखा अर्जुन को, अर्जुन में, इसलिए परमात्मा ने किसको ज्ञान दिया तो अर्जुन को दिया। अर्जुन मतलब वी आर ऑल अर्जुन, अर्जन करने वाले अर्जुन है। नकुल मतलब फॉलोअर्स, उनको अर्जन नहीं करना है, जो लीडर करेंगे उसको क्या करेगा, नकल करेगा, फॉलो करेगा। सहदेव हमसे होगा नहीं, आपको जो चाहिए ले लो, धन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। सहदेव मतलब सहयोगी बनेगा, सेवाधारी बनेगा, है ना। राजा को क्या चाहिए, सेवाधारी भी तो चाहिए ना, सभी राजा बनेंगे तो सेवा कौन करेगा। तो युधिष्ठिर यानी राजा, भीम मतलब युधिष्ठिर मतलब महाराजा, है ना, युधिष्ठिर महाराजा, युधिष्ठिर के साथ भीम राजा, अर्जुन राजाओं के साथ रहने वाला रॉयल फैमिली, नकुल प्रजा और सहदेव सेवाधारी। ये पांच कैटेगरी के पांडव है, समझ में आया। अर्जुन को डाउट जब क्लियर हो जाता है, परमात्मा पूरा विजन दिखा देते हैं, तो क्या होता है, वो बोलता है नष्टो मोह, मोह क्या हो गए, नष्ट हुआ मतलब इमोशनल बिफॉगिंग, यहाँ पे इमोशनल बिफॉगिंग आपका जो कंप्यूटर के सामने स्क्रीन में धुंध लगी हुई है, पता ही नहीं कौन से चित्र चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इमोशनल बिफॉगिंग। इमोशनल बिफॉगिंग क्लियर हो जाता है, बोलता है नष्टो मोहा, स्क्रीन साफ हो गया, अभी साफ दिख रहा है हमें। स्मृति लब्धा, हमारी मेमोरी स्टोर हो गई है। व्हाट इज दैट मेमोरी? मैं क्या हूं? आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। हम आत्मा इदम मम शरीर, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। और हमारी स्मृति लौट गई कि मैं क्या हूं, मेरे गुण क्या है, लक्षण क्या है, स्वधर्म क्या है, कर्म क्या है, और मैं अब करने के लिए तैयार हूं। यहीं पे गीता का अध्याय बंद हो जाता है। तो परमात्मा जिस मेमोरी की शिक्षा दे रहे हैं वो मेमोरी ये है। ये याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपको भी करा देंगे। कोई चीज को पढ़ करके याद कर लेना ये तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अंदर की मेमोरी जो हमारी असली है उसको एक्टिवेट करना, तब आपका मन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा, तब आप पावरफुल हो जाएंगे। उसी के लिए तो बुलाए आपको, ठीक है? तो अभी मन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? माइंड को कंट्रोल करने के लिए आपको समझ में आ गया, मेडिटेशन हो चाहे कोई भी चीज हो, किस चीज का यूज करना है? कलरफुल इमेज का। अगर आपका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता है, ध्यान का मतलब क्या होता है, किसी को भी हम कहते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो, कहा जाता है ना, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सुनो। क्यों कहा जाता है ध्यान से पढ़ो ध्यान, क्यों नहीं कहा जाता आंख से देखो कान से सुनो? ध्यान का मतलब क्या होता है? ध्यान का मतलब जो तीसरे नेत्र में जो यहां पे आता है उसी को ध्यान कहा जाता है। आप रामायण की चौपाई पढ़ रहे हैं, राम जी ध्यान में नहीं आए, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हनुमान जी ध्यान में नहीं आए, तो आप क्या कहेंगे, आज मेरा पूजा में ध्यान नहीं लगा। ध्यान का मतलब ही होता है कि जिसको हम जिसको याद कर रहे हैं उसका चित्र बने। अगर आप परमात्मा को याद कर रहे हैं, परमात्मा का चित्र बन रहा है, आप बोले आज बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ, एकदम बिंदु स्वरूप में मैं स्थित हो गया था, समझ में आ रहा है? तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपको इमेज, कलर, म्यूजिक, आर्ट और ग्राफिक्स में से कम दो को तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है? समझ में आया? हाँ बोलिए बोलिए।
रामचरितमानस के बारे में बहुत अच्छा विवेचन दिया है, थोड़ा मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें एक और पार्ट
जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दिल में क्या होता है, दिल का जब भी चित्र बनाते हैं तो क्या होता है, क्या लिखते हैं? लव लिखते हैं, कभी घृणा लिखते हैं, कभी ईर्ष्या लिखते हैं। आजकल कई लोग दिल का चित्र बना के तीर छोड़ देते हैं उसमें, पहले ही तीर मार देते हैं, दिल छलनी हो जाता है ना? तो दिल में प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, क्योंकि जब तक दिल में प्रेम नहीं होगा ना, उस दिल तख्त पे भगवान नहीं बैठेगा, ये आप ध्यान रखो। अगर आपको मन को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बुद्धि को, किसकी जरूरत होती है? और बुद्धि पावरफुल तब होगा जब बुद्धि रूपी तख्त बिल्कुल साफ होगा, और उस बुद्धि रूपी तख्त पे दिलाराम रहेगा। दिलाराम कौन है? शिवम है, परमात्मा है। तो हम अभी ऐसा एक्सरसाइज करेंगे कि हम अपने दिल को, दिल तख्त को साफ करेंगे, परमात्मा को बिठाएंगे, है ना, एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज से आपका कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। 21 दिन आप इसका अभ्यास करेंगे, ब्लड प्रेशर सदा सदा के लिए गायब हो जाएगा, इसकी गारंटी है शिव बाबा की, बैद्यनाथ की, ठीक है? और आपका माइंड आपके बस में हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है? करेंगे सभी? ओके। तो हम दिलाराम बाप को दिल पे बैठाएंगे, उसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे? साइंटिफिकली हार्ट चक्र की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 584 ट्रिलियंस वाइब्रेशन पर सेकेंड होती है, मतलब 5,840 अरब प्रति सेकेंड। जब इस फ्रीक्वेंसी पे आपका मन वाइब्रेट करता है तब आपका दिल तख्त साफ हो जाता है। और ये फ्रीक्वेंसी ग्रीन कलर से मिलती है, इसलिए प्रेम का रंग क्या होता है? हरा होता है। आप देखिए परमात्मा से हरे रंग की किरणें आ रही है, दिखाई दे रहा है, और पूरे शरीर में फैल रही है, पूरा प्रेम फैला हुआ दिखाई दिया चित्र। ओके, अभी हम लवफुल नेरोबिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं लवफुल नेरोबिक्स। तो हम अभी सभी करेंगे लवफुल नेरोबिक्स। वायु मुद्रा में रखें तो ज्यादा फायदा हो जाएगा। अपान वायु मुद्रा कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, है ना, पहले इस उंगली को आप दबाइए, तर्जनी को अंगूठे से दबाइए, और बाकी दोनों उंगलियों को, है ना, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को आप जोर दीजिए अंगूठे के टिप से। छोटी वाली उंगली सीधी रहेगी और इसको ऐसे गोद में रखेंगे, दोनों हाथों से मुद्रा करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब तीन बार लंबा सांस लें और मन को श्वास की गति पर केंद्रित करें, फील करें आपकी श्वास कैसे आ रही है, जा रही है। अब फील करें परमपिता परमात्मा से हरे रंग की किरणें आपके ऊपर गिर रही है, प्रेम की किरणें गिर रही है, शावर की तरह, झरने की तरह हरे रंग की किरणें आपके ऊपर आ रही है। परमात्मा आपके ऊपर प्यार बरसा रहा है और आप बुद्धि से उस प्यार को ग्रहण कर रहे हैं। परमात्मा का प्यार पाकर बुद्धि मगन होती जा रही है और शरीर में भी परमपिता परमात्मा का प्यार रोम रोम में फैल रहा है। फील कीजिए झरने की तरह हरे रंग की किरणें आपके ब्रेन से होते हुए, चेहरे से होते हुए, गर्दन से होते हुए दिल में जमा हो रही है। प्रभु प्रेम दिल में भरता जा रहा है, दिल परमात्मा के प्रेम से भर गया है और दिल से पूरे शरीर के अंगों में, रोम रोम में प्रभु प्रेम फैल रहा है। हृदय से पेट में, पेट से पेट के निचले हिस्सों में, फिर पैरों में, घुटनों से होते हुए पूरे शरीर के अंगों में फैल रहा है, पूरा फैल रहा है। प्रभु प्रेम पूरे रोम रोम में फैल गया, मेरा दिल प्रभु प्रेम से भर गया। अब आप देखिए आपके सामने खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं मैं आपके तभी बैठूंगा जब आप मेरा एक काम करोगे। आप बोले हाँ हे प्रभु मैं अवश्य करूंगा जो आप कहेंगे। अब आप फील कीजिए कि परमात्मा आपके उंगली को पकड़ करके आपको लेके जा रहा है और एक रूम में लेकर के गया। उस रूम में अंधेरा है, उसमें लेके गया। आप देखिए आप उस रूम में इंटर कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, रूम की लाइट ऑन हो जाती है ऑन होते ही आपके सामने वो सारे लोग दिखाई देते हैं। आपके सामने वो लोग हैं जिनको आपसे नाराजगी है। परमात्मा बोला कि आप सबको क्षमा करो और इनसे भी क्षमा मांगो। आप सबके चेहरों को देख रहे हैं, सभी आपके जान पहचान के हैं और आप परमात्मा की आज्ञा मान रहे हैं और बोल रहे हैं, सभी से क्षमा मांग रहे हैं और सभी को क्षमा भी कर रहे हैं। आपने सबको क्षमा कर दिया, फॉरगिव कर दिया, क्षमा भी मांग लिया, भगवान खुश हो गए और पूरा रूम हरे रंग के प्रकाश से भर गया। सबके ऊपर परमात्म प्रेम की बारिश हो रही है, प्रभु प्रेम सबके ऊपर बरस रहा है। कंटिन्यूअस सबके ऊपर प्रभु प्रेम की किरणें गिर रही है और सबका दिल निर्मल हो गया, दिल से सारी गंदगी निकल गई। आप उन सब से गले मिल रहे हैं, उन सबको गले लगा रहे हैं, आपने उनको माफ कर दिया, उन्होंने भी आपको माफ कर दिया। सबका दिल निर्मल हो गया, साफ हो गया, प्रभु प्रेम से सबका दिल साफ हो गया। आपने सबको माफ कर दिया, आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, असली खुशी दिखाई दे रही है, कोई बनावटी खुशी नहीं। और सभी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, आपका नेत्र प्रेम की आंसू से भर जाता है। और आप प्रेम स्वरूप बन जाते हैं, प्रेम स्वरूप। अब आपका बुद्धि रूपी दिल साफ हो गया और परमपिता परमात्मा आपके बुद्धि रूपी तख्त पर विराजमान हो गया और आपका बुद्धि पावरफुल हो गया, इतनी पावरफुल जो मन को वश में कर सके। बुद्धि रूपी लगाम परमात्मा के हाथ में आ गई। ये शरीर रथ है, आत्मा अर्जुन है, और बुद्धि रूपी लगाम जो मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करता है वो परमात्मा के हाथ में है। और हम इस कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हैं, ऐसा इमेजिन करें। दिल में प्यार भरा हुआ है, और हमारा जो गोल है बुराइयों को खत्म करना, उस गोल को ज्ञान के तीर धनुष से हम खत्म कर रहे हैं। असली अर्जुन बन गए हैं। मेरा मोह नष्ट हो गया, समृद्धि प्राप्त हो गई। आई एम ए पावरफुल सोल नाउ, मैं शक्तिशाली और प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। धन्य हूं मैं, धन्य मेरा भाग। अहो भाग्य, प्रभु हमारे दिल में है पधारे, प्रभु हमारे इस रथ में है पधारे। धन्य मेरा भाग, मैं धन्य हूं, धन्य हूं, प्रभु के पाकर धन्य हो गया। मैंने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया, मैंने अपना यह जीवन प्रभु को अर्पण कर दिया। अब आप गीत को सुनेंगे और प्रभु को अपने आप को जीवन को हवाले करेंगे और प्रभु प्रेम में झूमेंगे।
तुम जीवन तुमने आशा हमें है विश्वास, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम।
जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
देखिए वो आपको गले लगा लिए, दिल तख्त पे उन्होंने आपको बैठा लिया, आपका दिल बिल्कुल क्लीन और प्रभु के साथ यूनाइट हो गया। एक बार फिर लंबा सांस लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, फील करें प्रभु प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है, मेरे अनहद चक्र में प्रभु का नाद गूंज रहा है, प्रभु प्रेम फैल रहा है रोम रोम में। अब दोनों हाथों को रगड़े, चेहरे पे लगाएं, ओम शांति। अच्छा लगा, सभी ने दिल तक पे बैठा, होगा और आपका जमा का खाता हमेशा बढ़ता रहेगा। यही है कि आपको सबको एक ही कंडीशन है, क्षमा करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस इज इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट, लेकिन एक एक्सरसाइज 21 दिन करेंगे तब जाके होगा, एक दिन करने से नहीं।